आज है 7 जून दिन मंगलवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। मथुरा में हुई हिंसा पर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहा गोली मरने से नहीं हुई लोगों की मौत।
19 लोगों का पोस्टमार्टम हमारे जनपद में हुआ है, जिसमें 12 लोगों की जो डेथ हुई है बिकॉज ऑफ बर्न इंजरी, और जो 7 लोग हैं वो छोटे हैं उनके कारण हुई है।
नीतीश कुमार के आदेश पर पटना पुलिस ने टॉपर्स घोटाला मामले की जांच की शुरू। क्या हिलरी क्लिंटन बनेगी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार? अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को क्यों नहीं मिली सेंसर बोर्ड की हरी झंडी?
हमें उन्होंने जो कट हमसे पर्सनली कहा है, पंजाब का नाम हटाने को, शहरों के नाम हटाने को, एमपी एमएलए वर्ड्स हटाने को, हम उन सब चीज़ों के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिटी नहीं है ऑफिस।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, अशोक कुमार से। उत्तर प्रदेश में मथुरा के जवाहर बाग में बीते सप्ताह हुई हिंसा में मारे गए अवैध कब्जाधारियों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि ज्यादातर लोगों की मौत जलने या फिर भगदड़ में लगी चोटों की वजह से हुई, न कि गोली लगने से। अदालत के आदेश पर कब्जे वाली जमीन खाली करवाने गई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा में 24 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। तुर्की के इस्तांबुल शहर में आज पुलिस को ले जा रही एक बस पर हुए बम हमले में 11 लोग मारे गए और 36 जख्मी हो गए। मारे गए लोगों में 7 अधिकारी थे। तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगान ने इसे माफ न किए जाने वाला कृत्य बताया है और कहा है कि चरमपंथियों के खिलाफ लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी। ये चरमपंथी हमले उन लोगों के खिलाफ हुए हैं जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, इसकी माफी नहीं हो सकती। इसलिए हम चरमपंथियों के खिलाफ लड़ाई बिना डरे और बिना थके आखिर तक जारी रखेंगे। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगान के शब्द। अभी तक किसी ने इस्तांबुल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस साल अब तक शहर में ये 4th हमला है। पश्चिमी बांग्लादेश में 70 साल के एक हिंदू पुजारी की हत्या कर दी गई है। उनका गला रेता हुआ शव झेनाइदह जिले में उनके घर के पास धान के खेत में मिला। चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने पुजारी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि हाल के सभी हमलों के पीछे घरेलू इस्लामी चरमपंथियों का हाथ है। हिंदुओं, ईसाइयों, सेकुलर कार्यकर्ताओं और दूसरे अल्पसंख्यक लोगों पर संदिग्ध इस्लामिक चरमपंथियों के हमले बांग्लादेश में लगातार हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपना संकल्प दोहराया है और कहा है कि चरमपंथ के खिलाफ वो सीरिया की लड़ाई जारी रखेंगे। नवनिर्वाचित संसद को दिए अभिभाषण में असद ने कहा कि उनकी सेना सीरिया की 1 इंच जमीन वैसे ही आज़ाद करा लेगी जैसे उसने पलमायरा को आज़ाद कराया था। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगान के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्होंने कई विद्रोही गुटों को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि एलेप्पो सीरिया में एर्दोगान की उम्मीदों की कब्रगाह साबित होगा। और नेपाल के सुप्रसिद्ध संगीतकार अंबर गुरुंग का 78 वर्ष की आयु में मंगलवार को निधन हो गया। देश के तमाम बड़े राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उन्हें ऐसे सितारे की संज्ञा से संबोधित किया जो कभी अस्त नहीं होगा। और म्यांमार में बीबीसी के एक संवाददाता के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल उन्हें मिली 3 महीने की कठिन परिश्रम की सजा के खिलाफ अपील करेंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात मथुरा की। पिछले हफ्ते मथुरा में हुई हिंसा में मारे गए अवैध कब्जाधारियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि उनमें से अधिकांश की मौत जलने से या फिर भगदड़ की वजह से आई, चोटों से हुई, ना कि गोली लगने से। इस रिपोर्ट के बाद इस आशंका को और बल मिला है कि इस हिंसा के दौरान अधिकारियों ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश या तो दिया नहीं या फिर देर से दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस घटना के बाद राज्य भर में जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर कल से एक अभियान शुरू करने जा रही है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
जवाहर बाग के 19 कब्जाधारियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि संघर्ष के दौरान इनमें से किसी को पुलिस की एक भी गोली नहीं लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 23 कब्जाधारियों के शव मिले थे, जिनमें से 19 का पोस्टमार्टम मथुरा में हुआ और बाकी का आगरा में किया गया। मथुरा के नवनियुक्त SSP बबलू कुमार ने इस बात की पुष्टि की।
19 लोगों का पोस्टमार्टम हमारे जनपद में हुआ है, जिसमें 12 लोगों की जो डेथ हुई है बिकॉज ऑफ बर्न इंजरीज, और जो 7 लोग हैं उसको एंटीमार्टम जो इंजरीज हैं, जो चोटें हैं, उनके कारण हुई है। बाकी हमारी जो टीम है वो एनालिसिस कर रही है, पूरी रीड कर रही है एक एक चीज को कि कहीं अगर चोट लगी हो कोई हो तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, बट उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी गोली लगने से मौत हुई हो।
इससे पहले मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक मिश्र भी इस बात की पुष्टि कर चुके थे। वहीं अब ये संदेह और गहराता जा रहा है कि क्या सच में प्रशासन बिना किसी तैयारी और तालमेल के जवाहर बाग को खाली कराने चला गया था। ये सवाल शुरू से उठ रहे हैं कि अधिकारियों ने कब्जाधारियों की ओर से पथराव, आगजनी और गोलीबारी के बावजूद सही समय पर पुलिसकर्मियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया, और इसी के चलते उसे अपने 2 अधिकारियों को खोना पड़ा। IPS अधिकारी और उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ ठाकुर कहते हैं,
यदि पुलिस रिपोर्ट में ये तथ्य आए हैं तो प्रथम दृष्टया यह अवश्य माना जाएगा कि पूरी प्रक्रिया में उचित निर्देश देने में विलम्ब हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार की चोटें हैं वह यह बताती हैं कि इनके बीच आपस भगदड़ में मौत हुई है, और इससे पूर्व ही पुलिस वालों की कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी और कुछ लोग घायल हो चुके थे। ऐसी स्थितियों में तत्काल सम्यक डिसीजन देने में विलम्ब हुआ है।
हिंसा से ठीक तरीके से न निपट सकने के कारण मथुरा के DM और SSP का राज्य सरकार ने कल ही तबादला कर दिया था, लेकिन राजनीतिक दल सरकार की अक्षमता पर लगातार हमला बोल रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज फिर सरकार पर निशाना साधा।
आजादी के 68 साल के बाद शहर के बीचों बीच कुछ लोग कब्जा कर कर बैठ जाए और 2 साल से सरकार मुक्त प्रेक्षक बनकर रहे और जो खाली करवाने गए हैं वो पुलिस वालों को तलवार से मार दिया जाए, गोली मारकर शरीर के आर पार निकाल दी जाए और इस सरकार के माध्यम पर जू नहीं रहने चाहिए, जू नहीं रहने। इससे ज्यादा असंवेदनशील सरकार कोई नहीं।
अमित शाह का कहना था कि घटना के मूल में जमीन पर अवैध कब्जा था और इस तरह के कब्जे राज्य में हर जगह मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा कल से राज्य भर में अवैध कब्जे को हटाने के लिए अभियान छेड़ेगी।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज तय किया है प्रदेश कार्यालय में बैठकर कि ये जो जमीन कब्जा की एक परंपरा, एक सरकार के आशीर्वाद से परंपरा पूरे प्रदेश में चलाई, न केवल सरकारी जमीनों का कब्जा, निर्दोष गरीबों की जमीनों का कब्जा भी सपा के कार्यकर्ता और गुंडे करते हैं, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी।
इस बीच राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इम्तियाज मुर्तजा इसकी जांच करेंगे। हालांकि भाजपा और बसपा इस घटना की लगातार CBI जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उत्तर प्रदेश से निकलकर चलते हैं बिहार, जहां राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर पटना पुलिस ने टॉपर्स घोटाला मामले की जांच शुरू कर दी है। कल आधी रात इस मामले में 4 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पटना पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच के बाद ये पाया गया है कि कॉपियों में छेड़छाड़ की गई है। इस मामले के सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने टॉपर्स घोटाले की जाँच से संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग की समितियों को भंग करते हुए इसकी जाँच का जिम्मा बिहार पुलिस को था। सुनिए पटना से मनीष चांडले की ये रिपोर्ट।
बिहार के चर्चित टॉपर्स घोटाले में कल आधी रात को इंटरमीडिएट के 2 पूर्व टॉपर्स सहित 4 छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन द्वारा दर्ज मुकदमे में छात्र शालिनी राय, सौरभ श्रेष्ठ, राहुल कुमार और रूबी कुमारी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। FIR में परीक्षा और मूल्यांकन केंद्र की सहायता से मनमाने तरीके से रिजल्ट हासिल करने का आरोप लगाया गया है। पटना पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। CID और ATS के अधिकारी भी इसमें पटना पुलिस की मदद करेंगे। जांच के सिलसिले में आज दोपहर पटना पुलिस ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB के दफ्तर जाकर पूछताछ की। शुरुआती जांच के बाद पटना के सीनियर SP मनु महाराज ने बताया,
प्रथम दृष्टया उनके द्वारा पाया गया कि कॉपियों में भी छेड़छाड़ की गई है, कुछ अंक बदल कर, कुछ कागज बदल कर उसमें छेड़छाड़ की गई है और इनको टॉपर घोषित करने का प्रयास किया गया है, इनको लाभ पहुंचाया गया है। इसमें 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें 4 ये छात्र हैं और बाकी 3 कॉलेजेस जहाँ के ये छात्र हैं, जहाँ पर परीक्षा कंडक्ट की गई और जहाँ पर इवैल्यूएशन किया गया।
पटना पुलिस की एक टीम जाँच के लिए वैशाली जिला भी गई है। गौरतलब है कि वैशाली जिले के विष्णु राय कॉलेज का प्रबंधन और वहीं के छात्र इस मामले में जांच के घेरे में हैं। वहीं अभियुक्त बनाए गए छात्रों में से एक राहुल के पिता संजय सिंह का कहना है कि उनके बेटे को बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है। बीबीसी से खास बातचीत में उन्होंने बताया,
कानूनी सलाह मशवरा लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। मेरा बच्चा तो सर जो बिहार बोर्ड कॉपी दिया, जो शिक्षक के सामने सीसी कैमरा के अंदर में एग्जाम हुआ, मेरा बच्चा जो तैयारी किया उसके अनुसार एग्जाम दिया और मार्क्स टॉप किया, उसके बाद फिर ये क्या बोर्ड का लफड़ा है कि बच्चे लोग को इसमें खींचा जा रहा है, बेहोशा मानसिक तनाव दिया जा रहा है, तरह तरह की यातना दिया जा रहा है, समझिए कि बच्चे पर क्या बीत रही होगी। देखा तो इसमें कहीं कोई गलती है।
भाजपा ने इस मामले को बिहार के चेहरे पर काला धब्बा बताया है। साथ ही पार्टी ने बीएसएबी के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह को इस पूरे मामले के लिए दोषी बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारों के मुताबिक आज बिहार में स्कूली शिक्षा बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। वे इसके लिए शिक्षा अधिकार कानून को पूरी तरह जमीन पर नहीं उतारने, अयोग्य शिक्षकों की बड़ी पैमाने पर की गई बहाली और गैर सरकारी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा परिणाम के आधार पर सहायता देने की योजना जैसी बातों को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हैं। ये नीतियां तब बनी या जमीन पर उतारी जा रही थीं जब भाजपा भी नीतीश सरकार का हिस्सा थी। भाजपा के प्रदेश इकाई के प्रधान प्रवक्ता विनोद नारायण झा से मैंने पूछा कि क्या ये फैसले भी बिहार की बदहाल शिक्षा स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं?
ये हो सकता है कि इसका भी असर हुआ हो, लेकिन वो सवाल नहीं है। जब आप कोई जिम्मेवारी आपको मिलती है, एक चेयरमैन जैसे जगह पर शिक्षा के प्रधान के रूप में आपकी जिम्मेवारी मिलती है तो आपकी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है और सारे विद्यार्थियों का भविष्य आप पर टिका हुआ है। आप पैसे लेकर जाति के आधार पर और अन्य कारणों से किसी को टॉप कराते हैं और फर्स्ट कराते हैं, ये जघन्य अपराध है।
एक मीडिया इंटरव्यू के बाद सामने आए इस मामले में बीते एक हफ्ते के दौरान कई घटनाएं सामने आई हैं। पहले टॉपर्स की फिर से जांच हुई। जांच के नतीजों के मुताबिक दो टॉपर्स को फेल करार दिया गया। बीएसईबी ने न्यायिक जांच आयोग बनाया तो शिक्षा विभाग ने भी जांच के लिए समिति बनाई और अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस जांच कर रही है। मनीष चांडिल, बीबीसी पटना।
बिहार वही राज्य है जहां पर कुछ महीनों पहले दसवीं की परीक्षा के दौरान नकल करते छात्रों और नकल कराते अभिभावकों की तस्वीरें सामने आई थी और अब टॉपर्स घोटाला सामने आया है। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं बिहार तक ही सीमित हैं? क्या ये कहीं शिक्षा प्रणाली में कमी नहीं बताता है? इसी पर हमारी सहयोगी दिव्यार्या ने शिक्षाविद कृष्ण कुमार से बात की।
देखिए, ये कोई नई बात है नहीं। हमारी परीक्षा व्यवस्था में इस तरह की धोखाधड़ी बहुत समय से, बहुत पुरानी एक बात हो चुकी, बहुत समय से चली आ रही है और कालांतर में इसमें तरह तरह के व्यापारिक, जिनको आप न्यस्त स्वार्थ कहती हैं, वो विकसित हो गए हैं। उनकी रोजी से जुड़ी हुई है, तरह तरह के परीक्षा केंद्र इस किस्म के हैं जो ये काम करवाते हैं, मदद करते हैं छात्रों की तरह तरह से और उनसे पैसा लेते हैं। ये पूरे देश में ये समस्या है। ये कह सकते हैं आप कि हिंदी पट्टी में ये ज़्यादा है, लेकिन इसका कोई स्थायी इलाज करने की सोचता नहीं है।
आपने कहा हिंदी पट्टी में ये ज़्यादा है। बिहार में इससे पहले भी एक स्टूडेंट्स को पर्चियां देने के लिए जवाबों की एक एग्जामिनेशन सेंटर की खिड़कियों पे चढ़े हुए लोगों की तस्वीर बिहार से आई थी, तब भी इस मुद्दे पे बहुत चर्चा हुई थी। क्या बिहार को आप एक अलग नज़र से देखते हैं जहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है?
नहीं, मैं बिल्कुल अलग नज़र से नहीं देखता। ये पूरी हिंदी पट्टी में ही नहीं बल्कि और प्रदेशों में भी है। संयोग की बात होती है कि कोई चीज़ एकदम उजागर हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में जब व्यापम का घोटाला पिछले वर्ष उजागर हुआ तो उसकी जड़ों में यही सब था और वो भी इतनी एक सामान्य जो दसवीं या बारहवीं की परीक्षा का नहीं बल्कि व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए सामने आई थी चीज़ें।
और जो स्थायी सोल्यूशन आपने कहा जिसकी तरफ हम कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो क्या उस पर कोई भी काम हुआ है और उस काम में से क्या हिस्सा है जो इम्प्लीमेंट हुआ, जो नहीं हुआ?
जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने करके दिखाया, लेकिन अब CBSE भी अनाथ पड़ी है। एक डेढ़ साल से वहाँ कोई अध्यक्ष ही नहीं है। 2005 में जो राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा आई थी उसने परीक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की थी, जिनमें से कुछ को CBSE ने 2008 में लागू करना शुरू किया था, लेकिन 2-3 वर्ष के भीतर वो परिस्थिति बिल्कुल बदल गई और अब एकदम पुरानी वाली परिस्थिति लौट आई है। तो जिसको कहते हैं कि इच्छा तो है व्यवस्था में सुधरने की, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति का मतलब होता है ऐसी इच्छा जो बनी रहे और जो एक दिशा में आगे बढ़ाती रहे व्यवस्था को।
ये जो इच्छा शक्ति की कमी है, क्या इसके पीछे बस एक, जिसे कहते हैं, ऊर्जा की कमी है, एक विजन की कमी है, या आपको लगता है जैसे व्यापम के स्केल का जो घोटाला है, हो सकता है ये देश के अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग प्लेयर्स हैं, उनके अलग अलग फायदे हैं, इंटरेस्ट हैं?
नहीं, देखिए कोई एक वजह नहीं है। समाज की उदासीनता, राज्य की उदासीनता, सब कुछ मिल करके ही एक परिस्थिति का निर्माण करती हैं। तो हमारी परीक्षा पद्धति है ही इस किस्म की कि हर आदमी सोचता है कि इसमें से हमारा बच्चा ठीक से निकल जाए, उसके बाद व्यवस्था को भूल जाते हैं हम। तो इसलिए समाज में, मीडिया में, सरकारों में और स्वयं उन संस्थाओं में कोई स्थायी सुधार की इच्छा नहीं है।
तो स्थायी सुधार की कमी है। ये थे शिक्षाविद कृष्ण कुमार, उनसे बात कर रही थी दिव्या आर्य।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। अमेरिका में माना जा रहा है कि हिलरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी जीत लेंगी। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक हिलरी क्लिंटन को उम्मीदवारी पाने के लिए प्रतिनिधियों का समर्थन मिल गया है। यहां 6 राज्यों में प्राइमरी चुनाव हो रहे हैं और माना जा रहा है कि यहां बर्नी सैंडर्स से उनका कड़ा मुकाबला है। मैंने वॉशिंगटन फोन कर ब्रजेश उपाध्याय से पूछा कि यहां रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, तो उम्मीदवारी उनकी तय हो चुकी है, क्या अब ये माना जाए कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलरी क्लिंटन की भी उम्मीदवारी बन गई है?
देखें, सिर्फ गणित के हिसाब से देखें तो हिलरी क्लिंटन ने वो ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है, यानी अमरीकी इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने महिला उम्मीदवार को चुना है। उम्मीदवारी हासिल करने के लिए उन्हें 2383 डेलीगेट्स चाहिए थे और इनमें एक होता है प्लेज डेलीगेट्स, जो उम्मीदवार को राज्यों की जो प्राइमरी चुनाव होते के जो प्राइमरी चुनाव होते हैं उनमें जितने प्रतिशत वोट मिले उस हिसाब से आवंटित होते हैं। दूसरा है सुपर डेलीगेट्स, यानी पार्टी के अधिकारी और सेनेटरों को यह दर्जा मिलता है और कानूनी तौर से ये अपना वोट पार्टी के अधिवेशन में डालते हैं, लेकिन अक्सर वो पहले से ही अपना रुझान स्पष्ट कर चुके होते हैं। और कल रात जब समाचार एजेंसी एपी ने ऐसे ही कई सुपर डेलीगेट से बात की तो उन्होंने हिलरी क्लिंटन के लिए समर्थन व्यक्त किया और उस आधार पर हिलरी ये मैजिक नंबर जो है 2383 का वो पार कर गई हैं। लेकिन आज जैसा कि आपने कहा 6 राज्यों में प्राइमरी चुनाव हो रहे हैं और हिलरी का कहना है कि वो अभी जीत का जश्न नहीं मना रही हैं और वो एक एक वोट के लिए संघर्ष करेंगी और प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल करना चाहेंगी।
जी, जैसा कि 6 राज्यों में प्राइमरी चुनाव हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि बर्नी सैंडर्स के साथ उनका कड़ा मुकाबला है और बर्नी सैंडर्स उनके प्रतिद्वंदी हैं, वहीं माना जा रहा है कि हिलरी क्लिंटन की उम्मीदवारी तय है, तो ऐसे में क्या बर्नी सैंडर्स को ये स्वीकार्य होगा?
जी, अभी तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बर्नी सैंडर्स पहले से ही जो सुपर डेलीगेट्स का सिस्टम है उसकी तीखी आलोचना करते रहे हैं और मीडिया की भी उन्होंने काफी आलोचना की कल देर रात और कहा कि उन्हें प्राइमरी चुनाव से ठीक पहले हिलरी के नाम का ऐलान नहीं करना चाहिए था। उनके समर्थकों ने कहा है कि वो आखिरी वोटों की गिनती तक जूझते रहेंगे। सैंडर्स भी कह चुके हैं कि वो प्राइमरी चुनाव के परिणामों के बाद सुपर डेलीगेट से अपील करेंगे कि वो अपना वोट सैंडर्स के हक में डालें, क्योंकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराने में वो ज्यादा सक्षम है। गणित में सैंडर्स काफी पीछे हैं, लेकिन अगर वो कैलिफोर्निया, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, वहां जीत हासिल कर लेते हैं तो उनकी दलील होगी कि सुपर डेलीगेट्स के सामने कि गणित भले ही हिलरी के हक में है लेकिन जनता और जो नए इंडिपेंडेंट वोटर्स या स्वतंत्र वोटर्स जो होते हैं उनका जोश उनके साथ है और ट्रंप को हराने के लिए इन इंडिपेंडेंट वोटर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल सुपर डेलीगेट्स इस दलील को सुनकर टस से मस होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं।
श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका 3 दिनों की यात्रा पर गए हुए हैं। ब्रजेश उपाध्याय से घटनाचक्र में इस बारे में भी जानकारी लेंगे। हिलरी क्लिंटन की उम्मीदवारी पर जानकारी दे रहे थे वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय। अब बात फिल्म उड़ता पंजाब की। फिल्मकार अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिली और खबरों के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने इसमें कई कट्स लगाने के लिए कहा है। फिल्म पंजाब की ड्रग समस्या पर आधारित है। अनुराग कश्यप ने बीबीसी को बताया कि उन्हें सेंसर बोर्ड ने फिल्म में बदलाव करने के लिए आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है और केवल फोन पर जानकारी दी गई है। मुंबई में हमारी सहयोगी योगिता लिमई ने अनुराग कश्यप से पूछा कि सेंसर बोर्ड ने उन्हें क्या कहा है।
हमें जो भी कहा है सेंसर बोर्ड ने, वो फ़ोन पे कहा है या इन पर्सन कहा है, हमें अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल चिट्ठी नहीं आई है। एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन नहीं आया, वो पेपर में हमें दे ही नहीं रहे लिख के। सो हमें उन्होंने जो कट्स हमसे पर्सनली कहा है, पंजाब का नाम हटाने को, शहरों के नाम हटाने को, एमपी एमएलए वर्ड्स हटाने को, हम उन सब चीज़ों के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास चिट्ठी नहीं है ऑफिशियल। हमारे पास ऑफिशियल चिट्ठी आए तो हम उसको आगे लड़ें। तो हम लोग अभी तक चिट्ठी का ही वेट कर रहे हैं और ये 4 हफ्ते से हो चुका है। एग्जामिनिंग कमेटी से भी चिट्ठी नहीं आई थी, सिर्फ आई थी तो उन्होंने रेफर किया था रिवाइजिंग में, और रिवाइजिंग में देखने के बाद भी हमारे पास वो ऑफिशियल लेटर नहीं आया। तो उन्होंने बेसिकली हमको जो है बांध रखा है अपने, उन्होंने हमको लिमिट कर दिया कि हम अपनी लड़ाई आगे तक ना ले जा सके। और एक तरफ जहाँ मिनिस्ट्री बोल रही है कि आपके पास ट्राइब्यूनल है जाने को, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है जाने को, आप जाइए, आप एक तरफ वो बोल रहे हैं और दूसरी तरफ हमें चिट्ठी नहीं दे रहे कि हम जा सकें। सो हम लोग अजीब से फंसे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
सेंसर से आपके मतभेद क्या है? क्या आप भी श्याम बेनेगल की तरह उन्हें एक सर्टिफिकेट एजेंसी बना?
मेरे लिए सेंसर बोर्ड का नाम ही सर्टिफिकेशन बोर्ड है। मिनिस्ट्री भी इंसिस्ट करती है, जेटली साहब ने भी कहा है कि ये सर्टिफिकेशन बोर्ड है। उन्होंने मिस्टर राठौर ने तो आपत्ति जताई थी इस बात पे कि आप उसको सेंसर बोर्ड ना बोलें, सर्टिफिकेशन बोर्ड है। लेकिन सर्टिफिकेशन जो बोर्ड है उसने कभी सर्टिफिकेशन बोर्ड की तरह काम ही नहीं किया पिछले 2-2.5 साल में, उसने सिर्फ सेंसर बोर्ड की तरह काम किया। एक आदमी अपनी मोरालिटी सारी दुनिया के सिनेमा पे थोपना चाहता है, जो उनको सही लगता है वो सही है, जो उनको गलत लगता है वो गलत है।
क्या आप ये लड़ाई कानून के जरिए अभी लड़ेंगे?
हमने सारी लड़ाई अभी तक कानून के जरिए लड़ी है, लेकिन वो कानून में ही आता है, जब तक वो हमें चिट्ठी ना दे हम आगे नहीं जा सकते। तो हम कानून के जरिए ही लड़ना चाहते हैं। हमारी फिल्म रामन राघव के साथ जब आपत्ति जताई थी एग्जामिनिंग कमेटी ने, हम ट्राइब्यूनल में गए थे और ट्राइब्यूनल ने जो हमें बोला, सजेशन दिया, हमने उसको इम्प्लीमेंट करके हमने अपनी फिल्म वापस सबमिट कर दी। हमने जाकर के कभी हंगामा नहीं किया। हम तो इस फिल्म में भी हंगामा, हम चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं कानून के दायरे में और अपनी फिल्म रिलीज़ करना चाहते हैं। ना तो हमारी लड़ाई राजनीतिक है ना कुछ, हमारी राइट लड़ाई जो है एक फिल्म मेकर की आज़ादी की है, उसके फ्रीडम की है, उसके राइट्स की है।
तो आप कह रहे हैं आप अटके हुए हैं, तो आगे आप क्या करेंगे?
हमें जब तक चिट्ठी नहीं मिलेगी हमें नहीं मालूम हम क्या कर सकते। जब चिट्ठी मिलेगी, उन्होंने जो बोला है अगर उन्होंने वही कट चिट्ठी में भी लिखे तो फिर हम उस पर रिएक्ट करेंगे और उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे। कल को उन्होंने बोला कुछ और है, कल को जो लेटर आता है उसमें लिखा हुआ कुछ और आया, तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी ना।
अगर सेंसर बोर्ड अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाता तो फिर फिल्म मेकर भी निरंकुश हो जाएंगे, वो कुछ भी देने लगेंगे दुनिया को, क्या वो सही होगा?
मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड जो है वो सेंसर बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। सर्टिफिकेशन बोर्ड जो पहला निलानी कमेटी ने ये बात बहुत क्लियरली डिफाइन की हुई है कि एक रेटिंग सिस्टम है। जब सिनेमा वाले कुछ भी चाहे बनाए, हाँ, आप एक सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि ये इस उम्र के इस तबके के लोग देख सकते हैं, जो अपने लिए सोच सकते हैं। मतलब अगर कोई भी आदमी, कोई भी गैर जिम्मेदार सिनेमा बनाता, मैं तो नहीं जाता ना देखना, तो मैं अपने लिए सोच सकता हूँ कि मुझे वो नहीं देखना है। आई एम सेइंग एक सर्टिफिकेशन बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, और वो अगर जिस वो जो बात कर रहे हैं कि लोग इतने बिना किसी अंकुश के कुछ भी बनाएंगे, तो आधी से ज़्यादा दुनिया में इस तरह का सेंसर बोर्ड नहीं है, सर्टिफिकेशन बोर्ड है। लेकिन वो दुनिया वैसी की वैसी चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा कोई सिनेमा बन नहीं रहा है जो कि बुरी तरह से डैमेज करे। वो हमारा अपना डर ज़्यादा है, हमारी इनसिक्योरिटी ज़्यादा है।
और क्या आपको लगता है कि पार्टी विशेष की विचारधारा से प्रभावित होकर या फिर राजनीति से प्रभावित होकर सेंसर बोर्ड काम कर रहा है?
ये मैं नहीं कहूँगा, इसके बारे में मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ उड़ता पंजाब तक सीमित नहीं है। ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, ये चीज़ें मस्ती ज़्यादा जैसी फिल्म के साथ हो चुकी हैं, ये चीज़ें जो है प्रकाश झा की फिल्म के साथ हो चुकी हैं, और ये मुझे इतना मालूम है ये व्यक्ति विशेष का काम है। ये प्रहलाद निलानी खुद जो है उन्होंने एक बहुत ही क्या बोलते हैं बेहुदा सा म्यूज़िक वीडियो भी बनाया था हमारे प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, हाँ, जिसके लिए उनको काफ़ी जूते भी पड़े थे और पढ़ने भी चाहिए थे। तो वो जो है वो उनको लगता है कि उनके इन सब कामों से, उनकी इस मोरालिटी से जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं बड़े खुश हो जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, जो कि होने वाला है नहीं। तो वो जो है वो चीज़ जो उनको एम्पावर करती है, उनको ताकत वहाँ से मिलती है और उनके साइलेंस से मिलती है। मेरी जो प्रॉब्लम है अपने मिनिस्ट्री के साथ या अपने मिनिस्टर के साथ कि वो इस तरह के आदमी को अपने अंदाज से अपनी मोरालिटी के साथ कैसे फंक्शन करने दे रहे हैं।
फिल्मकार अनुराग कश्यप से बात कर रही थी योगिता लेमई। भारत सरकार की साल 2019 तक पूरे देश में शौचालय बनाने की योजना के सामने एक बड़ी परेशानी आ गई है। गांव वाले सरकार की तरफ से बनाए गए इन शौचालयों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में इसकी पड़ताल करती दिव्यारिया की ये विशेष रिपोर्ट।
अच्छा।
भोर का वक्त है और हम गांव के पास के खेत में खड़े हैं। ये 5 आदमी मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने गेरुआ रंग की जैकेट्स पहनी हुई हैं और ये टॉर्च मार रहे हैं जैसे ही इन्हें कोई दिखता है खेत की तरफ बढ़ते हुए। और अभी इन्होंने एक बुज़ुर्ग आदमी को रोका है और ये मुझे बता रहे हैं कि ये शख्स रोज़ इन्हें यहाँ खेत में मिल जाते हैं, जबकि सरकार ने इनके घर में एक शौचालय बनवा रखा है।
देहात गए, अभी तो इतना सुधार है ही नहीं, भाई सुधार आएगा जब ही तो। अब धीरे धीरे अब समझा रहे हो, तैसे अब सुधार आता जाएगा।
ऐसा लग रहा है मानो गश्त लगाई जा रही हो। आदमी, औरतों और बच्चों के झुंड पूरे गांव में फैल गए हैं। मकसद है खुले में शौच यानी टॉयलेट करने के लिए निकले लोगों को रोककर शर्मिंदा करने का। 15 साल का हरि ओम दबी आवाज में शर्माते हुए कहता है,
हमें उसमें पसंद नहीं है, गर्मी से पलटी सी आने लगती है, गैस बनी।
रोकने के बाद वॉलंटियर थोड़ा प्यार और थोड़ी सख्ती से समझाते हैं कि खुले में टॉयलेट जाने से सेहत को क्या नुकसान हो सकते हैं। फिर हरी से पानी का लोटा लेकर फेंक देते हैं ताकि उसे घर लौटना पड़े। भारत सरकार पिछले 30 सालों से शौचालय यानी टॉयलेट बनाने की स्कीम चला रही है, पर साल 2014 में मोदी सरकार के तहत पहली बार इन स्कीमों का फोकस बिरादरी को बनाया गया। अब नए टॉयलेट बनाने से पहले वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है।
गांव में औरत जब पर्दे में रहती है, वो लाज, इज्जत, हया, शर्म सब।
हरेंद्र पाल सिंह इनके लीडर हैं। वो मुझे बताते हैं कि यहाँ औरतों की इज्जत वाली दलील गांव वालों को ज्यादा समझ में आती है।
इनको हम ये कहते हैं कि जब तुम्हारी बहन बेटी सुबह लोटा लेके खेत में टट्टी करने जाती है और वो अंग जो दिखाने लायक नहीं है, केवल उसके पति को देखने का आंख है, वो अंग सारा गांव देखता है, तुम्हारा जेठ देख रहा है, तुम्हारा ससुर देख रहा है, जब तुम्हारी इज्जत, लाज, हया, शर्म कहाँ चली जाती है, जब तुम्हारी उसमें वो नहीं होती है, आंखों में शर्म।
वैसे ज्यादातर औरतों को किसी दलील की जरूरत नहीं, उन्हें तो बस टॉयलेट चाहिए। ये तो मर्द हैं जो उन्हें रोके हुए हैं। हम पास के एक गांव में आए हैं, बिल्कुल पहले गांव जैसा ही है, छोटे घर जिन पर कोई पेंट नहीं हुआ है, खुली नालियां हैं, बहुत सारी भैंसे हैं, एक आध हैंडपम्प भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जो देखने आए हैं वो तो यहाँ के शौचालय हैं। यहाँ भी सरकारी शौचालय बनाए गए हैं, कई घर के बाहर बनाए गए हैं, लेकिन ये जो शौचालय हैं हमें बताया जा रहा है इनमें से कई इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। इस शौचालय में बहुत सारे गोबर के कंडे रखे हुए हैं, इसको गोडाउन बना दिया गया है।
खेत में जाने में जैसे कभी
पूनम कुमारी के परिवार का टॉयलेट भी स्टोर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कपड़े और किचन का स्टोव रखा है।
अगर खेत में जाएंगे तो एक लोटा खर्च होगा, अगर लैट्रिन में बैठेंगे तो एक बाल्टी खर्च होगा, इसलिए हम पानी की थोड़ी पानी की समस्या खराब है, इसलिए बाहर जाते हैं। हम सुबह जल्दी जाते हैं अपनी मम्मी के साथ, जब तक उजीता नहीं निकला जब तक लैट्रिन बाहर जाके चले जाते हैं, उजीता हो जाता है तो इधर उधर सब लोग घूम लगाते हैं।
भारत में खेतों को जाती औरतों के रेप और कत्ल की कई खौफनाक वारदातें हुई हैं। मर्द इन खतरों को समझते तो हैं, फिर भी टॉयलेट्स को अहमियत नहीं देते।
As we say, old habits die hard.
निधि केसरवानी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन यानी क्लीन इंडिया कैंपेन की यहाँ की इंचार्ज हैं।
उन गांव की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, अब उनके आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, उनकी स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन हुआ है उन गांव में, इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है ताकि लोगों को भी ये जानकारी हो कि अगर हम खुले में शौच मुक्त करते हैं तो ये कोई प्रशासन का अचीवमेंट नहीं होगा, ये लोगों का और उस समुदाय का अचीवमेंट है।
निधि रोज कई चुनौतियों से रूबरू होती हैं, पर उन्हें यकीन है कि सरकार की ये स्कीम कागज पर ही नहीं रह जाएगी। दिव्या आर्य, BBC, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश में मथुरा के जवाहर बाग में बीते हफ्ते हुई हिंसा में मारे गए अवैध कब्जाधारियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक ज्यादातर लोगों की मौत जलने या भगदड़ में लगी चोटों की वजह से हुई। तुर्की के इस्तांबुल शहर में आज पुलिस को ले जा रही एक बस पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए हैं जबकि 26 घायल हो गए हैं। पश्चिमी बांग्लादेश में 70 साल के एक हिंदू पुजारी की हत्या कर दी गई है और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने संकल्प दोहराया है कि चरमपंथ के खिलाफ वो सीरिया की लड़ाई को जारी रखेंगे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अशोक कुमार। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। घटना चक्र में 9:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।